Ladies and gentlemen, good day and welcome to True Colors Limited H1 FY26 earnings conference call, hosted by Equirus Advisors Private Limited. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Chandni from Equirus Advisors Private Limited. Thank you, and over to you, ma'am.
Thank you. A very good afternoon to everyone. Welcome to the H1 FY26 earnings call of True Colors Limited. From management team, we have with us today Mr. Satish Kumar Panchani, Executive Director and CEO, Mr. Sagar Kumar Mulani, Executive Director and CFO, Ms. Jawanika, Company Secretary. We will have opening remarks from the management team, post which we will open the floor for Q&A. With that, I would like to hand over the call to Mr. Satish Kumar for opening remarks. Over to you, sir.
Thank you so much, Chandni. Am I audible right now?
Yes, sir, you are.
Okay. Yeah. So good afternoon, everyone, and thank you so much for joining the True Colors Limited H1 FY26 earnings call. In True Colors, we are not only supplying machines, ink, paper, and fabrics. We are creating a plug-and-play ecosystem that empowers MSME entrepreneurs to adopt modern technology by becoming their all-in-one service and supply partners. I am Satish Panchani, CEO and co-founder of True Colors, and with me today are our Director and CFO, Mr. Sagar Mulani, and our Company Secretary, Ms. Jawanika Gandharv. So it's truly a proud moment for all of us to host our very first post-IPO earnings call. सबसे पहले मैं अपने सारे shareholders, partners, supporters को heartfelt thank you करना चाहूंगा पूरी True Colors की team की ओर से, जिनके support and commitment और dedication की वजह से हम हर half year में नए milestone को achieve कर पा रहे हैं। इस साल की शुरुआत जो हमने करी थी, with दो clear objectives के साथ हमने साल को शुरू किया था। First, to accelerate our growth across all three verticals, machine and ink, paper, and fabric. And second objective was to prepare True Colors for the next phase of expansions by strengthening our financial capacity and building a stronger future-ready team. So coming to the first objective, I am very happy to share that during H1 FY26, our total revenue reached 151 crore, which is almost 63% higher than last year H1 revenue, which was 92.8 crore, and it is along with the strong EBITDA and PAT margin. So there are mainly four core factors that powered this growth. Number one, optimum utilization of our manufacturing facility. जैसे manufacturing division का total revenue, जो last H1 में 46 crore था, वो बढ़ के इस H1 में 68 crore हुआ है। So it's almost 50% jump. If we talk about the ink business, second is the ink business, जिसमें हमने इस half में 50% का healthy growth हुआ है। Last H1 का revenue was 35 crore, जो इस साल बढ़ के 40 crore achieve हुआ है। Spare part and consumable also bring better contribution, approximately 6 crore, जो कि nearly equivalent to full last year का revenue के हिसाब के सामने, this six months we have achieved that number. और number four is the सबसे बड़ा जो highlight जो part है, that is the machine business का strong performance. इस H1 FY26 में हमने total 60 machines floor पे install किए हैं, worth rupees 38 crore, 4.45 lakhs, compared to just 7 crore business what we did in last year into machine division. So which clearly shows that industry is growing and having trust in True Colors. So it's covered almost all our orders, जो हमने DRHP में जो mention किए थे, we have delivered almost all the order excluding one, which we are going to deliver in this H2, with more eight machines are orders in hand worth rupees 9 crore that we are going to be delivered in upcoming future. This performance again linked to what we have achieved in H2 FY25, but before comparing, let me share a quick view about the textile industry. As we all know, the textile industry itself is a seasonal business, where Q1 is generally the slowest quarter, and volumes start picking up after July onwards with the festive and wedding season go on. So despite of this seasonality, we have delivered around 10% higher overall revenue compared to H2 FY 2025. However, our manufacturing contribution was about 20% higher, around 85 crore in H2 FY 2025 compared to 68 crore in this H1 FY 2026, which is very normal in Q1 and Q2. And secondly, in H2 FY 2025, from our trading business, machine contributed around 17 crore, means 30% of that division's revenue, and only 12% of the total business. So since we all know that machine margins are very thinner, the overall impact on EBITDA and PAT was very limited impact in H2 last year. If we talk about the current H1 FY 2026, machine contribution stood around 26%, and again, a thin margin product, but one that builds a long-term recurring base of ink, paper, and spare parts. So because of this mix, our EBITDA margin in this H1 is 16% and PAT margin is 10%, which we see a healthy level. We believe that every machine that we install today become a future customer for ink, paper, and services. So that's how our compounding engine works, one installation at a time, building a steady stream of recurring revenue. So while quarter-to-quarter mix may change, our direction stay consistent, strong top-line growth today, expanding recurring revenue margin base for tomorrow. So coming back to the short-term focus and goals, our direction remains the same. We are working to achieve maximum utilization of our manufacturing capacity, and with the support of newly installed machines in paper and printing division, we expect to get new market share in near future. And now, if we go back and talk about the second objective of the year that we have started with, first is the installation of our newly 1 MW solar rooftop power plant, which will be operational in next couple of months, hopefully. Parallelly, keeping in mind a kind of growth and infrastructure that we are planning for next 3 to 5 years, we have already started building our team, both in-house and through specialized outsourcing partners. So this may add some additional cost in terms, in short terms, but it's necessary to invest to create a self-sustaining, vertically integrated, competitive, and reliable ecosystem. The idea is to build a strong foundation from today so that we can achieve the future growth with clarity and confidence. So since our bank term loans are fully repaid, we now have a clean balance sheet and strong creditworthiness, so giving us that flexibility to raise funds whenever we require for our future infrastructure or expansion. And going forward, our priorities are very clear. First is to sustain high growth across all three verticals by doing backward and forward possible integration in place. Second is to enhance capability utilization in both manufacturing division, strengthen our fabric export business, and work closely with Indian brand, export houses, direct international buyers that is supported by the right global certification again. Continue expanding our ink and machine customer network to widen our recurring revenue base and continue investing in green energy to make our operations more energy efficient. So each of these steps that move us towards one vision to make True Colors not only India's most integrated digital textile technology ecosystem, but also a globally competitive and reliable brand. So in closing, I would like to say this: our team is young, energetic, committed, and transparent, and fully aligned towards the long-term value creation for all of us. Our direction is clear, our foundation is strong, and together we are preparing True Colors for the generational shift in textile printing. So main फिर से सभी इन्वेस्टर एनालिस्ट पार्टनर जो भी कॉल पे प्रेजेंट है सबको थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर योर कंटिन्यूस ट्रस्ट एंड बिलीफ इन आवर जर्नी सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल एंड वी विल नाउ हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेश्चंस
थैंक यू वेरी मच सर वी विल नाउ बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन मे प्रेस स्टार एंड वन ऑन देयर टचस्टोन टेलीफोन इफ यू विश टू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन क्यू यू मे प्रेस स्टार and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Manmaru from Shatrunjaya Investment Managers LLP. Please go ahead.
Hi. So my
Hello,
first question is, I wanted to ask regarding your overall capacity utilization for this H1 FY 2026.
So if we talk about the manufacturing, there are two parts. Number one is a paper manufacturing business, where the capacity utilization last year it was 89%, And in this H1 FY25, it is almost similar. It's 85% to 90% capacity that we are utilizing right now. And for that reason only, we have expanded our capacity. Like if I talk about the capacity, then we are able to produce the paper of around 1 crore meter every month, and we have just enhanced the capacity to 2 crore meter. So in last 6 months, we have almost utilized that capacity by 90%. And if we talk about printing businesses, then the capacity utilization was around 75% in H1.
Okay, so for printing it is 75% for H1.
Yeah, because printing is the more like a make to order business for us when we talk about digital textile printing. And in make to order process, the 75% is the 75% to 80% is the maximum capability, the capacity that we can utilize.
Okay, so how much did you expand in it in printing?
So we have expanded that capacity almost by 15% this year. We have installed 2 new machines and some supporting auxiliary machines as well. So that machine will hopefully be in operation in next 1 or 2 months.
Okay. What growth do you expect further for this year, FY26, as well as FY27, and like what's your strategy?
Right. So जो growth की जो हम बात कर रहे हैं, so what we have achieved right now, so year on year we are hoping, अगर हम उसको conservative होके भी अगर देखें, so 30% of the revenue growth that we are hoping year on year. But yes, जो अगर strategic point of view से अगर इसको देखें, तो there are so many thought process are going on right now, जो कि backward integration और forward integration की direction में काम कर रहे हैं. So down the line, अगर conservative होके बात करें, then 30% year on year growth we can do, because we have already installed that production capacity, जो next year, इस year से ज्यादा production हमें या ज्यादा revenue generate कर पाएगा. But apart from that, there are so many thought processes are going on, जिससे इसको और ज्यादा स्पीड से स्केल अप किया जा सके.
ओके, एंड मार्जिन साइड, योर एबिटा मार्जिन हैड बीन फ्लक्चुएटिंग, लाइक फॉर H1 FY25 इट वाज 3.38. या सो लाइक व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, एंड व्हाट गाइडेंस डू यू हैव ऑन मार्जिन साइड?
सो जैसे मैंने शुरू में जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे, उसके अंदर जो मैंने मेंशन किया था, और ईबीटा मार्जिन, क्योंकि जो हमारा रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम 4 मल्टीपल्स. एक मशीन से रेवेन्यू जनरेट होता है, सेकंड रेवेन्यू इज जनरेटिंग फ्रॉम इंक, थर्ड इज फ्रॉम पेपर, एंड द फोर्थ वन इज फ्रॉम द फैब्रिक बिजनेस. सो व्हेनेवर जब मार्जिन का जो कंज्यूमेबल जो बिजनेसेस है, जो फैब्रिक का जो बिजनेसेस है, उनके जो मार्जिन, ईबीडा मार्जिन या पैट मार्जिन है, वो दे आर वेरी स्टेबल एंड दे आर वेरी गुड. अगर इफ यू टॉक अबाउट द मार्जिन इन टू द मशीन, वहां पे हम बहुत ही थिनर मार्जिन पर काम कर रहे होते हैं, बिकॉज द आइडिया इज टू इंस्टॉल द मशीन एंड देन फोकस ऑन द रिकरिंग रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द इंक एंड पेपर बिजनेस, राइट? सो लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड दैट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मशीन बिजनेस इन लास्ट ईयर वॉज 23 करोड़, जबकि इस साल का H1 का रेवेन्यू इज 38 करोड़, राइट? सो दैट गिव्स यू दैट फ्लक्चुएशन इन टू द ईबीडा मार्जिन.
And how many more new machines you are going to make?
So right now in H2, if we talk about the orders in pipeline, then we are having 8 machines order in hand, worth around 9 crore. So, and I guess by the end of the year, we should reach somewhere around 90 to 100 machines should be installed by the end of the year. So that kind of traction is already there.
Okay, yeah, got it, sir. And one more question, I wanted to ask, can we have the plant visit if we want to?
100% you can have plant visit. You can connect with the Equibridge, they are our IRPL partner, and we'll arrange the timeline for you, and you can definitely visit the plant.
Okay.
It will give you actually more clear idea that what we are doing and how we are operating.
Yes, exactly.
Yeah.
एंड मार्जिन साइड, सो मार्जिन मतलब ऐसा ही रहेगा, मतलब फ्लक्चुएट होते रहेगा कि इट विल लाइक गो स्टेबल और लाइक?
तो फ्लक्चुएशन इन द मार्जिन इज ऑल्सो लाइक, क्योंकि ये अगर मोटा मोटी इसको एयर एंड लेवल पे अगर हम देखने जाए, देन वी ट्राई टू मेंटेन दैट मार्जिन जो हम हमेशा बोलते हैं, इट्स ईबीडा मार्जिन इज द रेंज ऑफ 13 to 16%. So 15% on an average is the EBITDA margin. If we talk about the PAT margin, then 9% to 11% is the average. So this time we have achieved the 10%. So this is the average that we can achieve throughout the year. So in the half year, what we have witnessed this year, if the machine's revenue goes up, then it will bring the margins down. But at the same time, it is also helpful for us because it will again generate the recurring revenue for the future. You know, the six machines that we have installed, it will bring the production capability of almost 2 lakh meter every day.
Okay.
So that will add on in terms of paper business, in terms of ink business. That is your secured business for your future.
Okay. Got it, sir.
Yeah.
Thank you so much. You answered the question.
Thank you so much. Thank you so much.
Thank you. Ladies and gentlemen, the call is scheduled for 1 hour only. Request you to please limit your questions to 2 per participant. The next question is from the line of Ronak Bansal from Orbit Capital. Please go ahead.
Hello, Ronak ji.
Hello, sir. Thank you for the opportunity. Congratulations on a great set of numbers. As we know that you've already mentioned that in this half yearly we add more printer installations and that sets as a good base for recurring sales of consumables. But what I wanted to understand was why will the customer buy consumables only from us? Are there not other players supplying the ink or the paper or other consumables? Why is this part of the business sticky to us?
Okay, very good question, sir. So Ronak ji, what kya hota hai ki as a consumer, let's say you decide to buy the digital textile printing machine, right? So it is not only about machine. It's not like our desktop printer जो हमारे offices में लगता है कि एक बार printer का installation हो गया and then we don't need any service support, right? जबकि textile printing के अंदर क्या होता है कि base is changed every time. तो machine is come with the technology. Number one की जब आप पहले machine buy करते हो ना तो that machines come with the warranty of spare parts, warranty of print heads and warranty of the electronics. So that warranty is tied up with the ink supply. So, जब तक आप वो ink use कर रहे हो, तभी तक आपके लिए वो machine के head की, machine के spare part की और machine के print जो parts हैं उनकी warranty रहती है. The day you change the ink ना, ये आपकी warranty वहाँ पे void हो जाती है. Number one, number two, आपको जो after the warranty period जो आपको machine के लिए जो consumable चाहिए होंगे, उसके जो spare part चाहिए होंगे, उसके लिए आपकी dependency जिस company से आपने machine buy किया हुआ है, उन पे रहती है. So that is number two, कि जिसकी वजह से आप ink change नहीं करते, आप steady उन्हीं के साथ रहते हो. Number three, क्योंकि digital printing जो है sir, it's a business of make to order process. यहाँ पे क्या होता है कि customer किसी भी एक fabric के ऊपर आपसे 10 design print कराता है, उसमें से 2 design select करता है, he makes the garment, take the order and then आपको as per requirement वो order pass on करता है. तो ये पॉसिबल है कि जो चीज आज आपने एक बार किसी के लिए प्रिंट करी है, एक साल बाद उसी का रिपीट ऑर्डर आपके पास आ सकता है. द मोमेंट यू चेंज द इंक, आपके जो कलर वेरिएशन जो टोन है वो चेंज हो जाते हैं. सो इट्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इट्स मोर लाइक अ मैरिज रिलेशन काइंड ऑफ थिंग, कि जहाँ पे एक बार कस्टमर ये दिमाग में बजाता है कि मुझे ट्रू कलर से मशीन बाय करनी है, सो कंज्यूमेबल दे आर लाइक इट्स लॉन्ग टर्म, मतलब लाइफ लॉन्ग रिलेशन हो जाता है कि वो आप ही से बाय करता है.
Gives us a very good understanding. And my second question is, what percentage of our produce from sublimation paper are we using for our own digital printing services currently? And you have already answered this, and what margin do we make in this sublimation paper business?
राइट. सो हम जो सब्लिमेशन पेपर जो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका ऑलमोस्ट अभी जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 10-12% ऑफ पेपर हम खुद कंज्यूम करते हैं. जैसे हमारी कैपेसिटी, जैसे मैंने मेंशन किया कि वी आर ऑलरेडी डबलिंग आवर कैपेसिटी, तो वो कैपेसिटी के सामने फिर ऐसा हो जाएगा इट विल रिमेन अराउंड 7-8% जो कि सेल्फ कंजम्पशन होगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मार्जिन, देन ईबीडा लेवल पे आर ऑल बिजनेसेस अपार्ट फ्रॉम मशीन बिजनेस इज जनरेटिंग अराउंड 50 इन द रेंज ऑफ 13-17% मार्जिन इज देयर इन एवरी बिजनेस एट ईबीडा लेवल.
प्लीज रिजॉइन द क्यू फॉर मोर क्वेश्चन.
थैंक यू
थैंक यू
सो मच. थैंक यू सो मच रोनक जी.
Thank you. The next question is from the line of Madhur Rathi from Counter Cyclical Investments. Please go ahead.
Hello, sir. Thank you for the opportunity. Hello, sir. Hi, sir. Sir, I wanted to understand that, sir, who would be our major competitors in the domestic market? And, sir, the machines that we are importing, sir, are we selling it under True Colors brand or the Konica, the three companies that we have mentioned in our RHP? Are we... So, are we selling it on their name or are we white labeling it to True Colors name and then selling it in the market?
Right. So, first of all, answer to your first question, ki, True Colors, who are the competitor? So, number one is ki, jo, humare teen different verticals hai. One is the trading division, jahan pe machine aur ink supply karte hai. And two are the manufacturing, jahan pe paper manufacturing karte hai, sublimation paper banate hai, and the printing division. So, teeno division mein, teeno verticals mein, we have the different competition is there, different peers are there. अभी इंडिया में ऐसा कोई एक इकोसिस्टम नहीं है कि जैसे True Colors एक कंप्लीट इकोसिस्टम के तौर पे काम कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहे. सो इन मशीन एंड इंक वी हैव द डिफरेंट कंपटीशन. इन पेपर बिजनेस देयर आर 8 to 10 पेपर मैन्युफैक्चरर आर देयर जो कि ना प्रिंटिंग बिजनेस में ना मशीन सप्लाई करते हैं. तो दैट्स हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन. और जब मशीन की हम बात करते हैं तो मशीन नॉर्मली जब कस्टमर टेंड टू बाय द मशीन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सिलेक्ट दी सप्लायर द ओईएम पार्टनर की जो यहाँ पे उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. सो इट वर्क्स ऑन द बोथ द वे. व्हेन वी टॉक अबाउट द कोनिका मिनोल्टा जो कि एक जापानीज ब्रांड है, तो वहां पे कोनिका मिनोल्टा और True Colors की सर्विसेज, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन होके सामने वाला डिसाइड करता है कि आई एम गोइंग टू बाय दिस मशीन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द चाइनीज मशीन, इट्स मोर अबाउट मशीन फ्रॉम True Colors. तो एक व्हाइट लेबल जैसा ही वो बन जाता है.
Got it. और सर एक ये समझना था सर आपसे कि सर मतलब एक हाउ सर सो इफ आई कंसिडर सर कि एक मतलब सिमिलर इंडस्ट्री है सर कंट्रोल ब्रेंट और एस्टेक बोल के जो हमारे जैसा काम करते हैं. सो सर वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ बिग कैन दिस डिजिटल प्रिंटिंग मार्केट बी ऑफ जस्ट मशीनरी एंड इंक सप्लाई. एंड सर डू वी प्लान टू मूव इन टू इंक मैन्युफैक्चरिंग आवरसेल्व्स टू इम्प्रूव आवर मार्जिन इवन फर्दर.
तो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली सर. मार्केट की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया अभी जो टोटल हम फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको डीप आंसर दे देता हूँ. जो हम टोटल फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं ना, दैट इज समवेयर अराउंड 7,500 करोड़ मीटर फैब्रिक इंडिया एन्युअली प्रोड्यूस करता है, वीव करता है, जिसमें से लगभग 30% यानी कि 2500 करोड़ मीटर फैब्रिक ऐसा होता है जो कि प्रिंट होता है. और पिछले 6 डिकेड से इंडिया में जो भी फैब्रिक प्रिंट होता है दैट इज यूजिंग अ कन्वेंशनल प्रिंटिंग मैथड. सो पिछले 10 साल से कन्वेंशनल प्रिंटिंग के जो भी चैलेंजेस थे उसको ओवरकम करते हुए डिजिटल प्रिंटिंग इज मेकिंग इट्स रूम. जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, मेक टू ऑर्डर की बात आती है, फास्ट फैशन की बात आती है, लोअर एमओक्यू की बात आती है, सो डिजिटल प्रिंटिंग एज अ अपर हैंड. सो राइट नाउ अगर हम इसको देखें ना, तो अभी हम इंडिया लगभग अराउंड 200 करोड़ मीटर वी आर प्रिंटिंग राइट नाउ. और मार्केट जो अभी प्रिंटिंग का इंडिया के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कन्वेंशनल हो रहा है वो 2500 करोड़ मीटर का है. सो डिजिटल का पेनिट्रेशन इज अराउंड 7 to 8% जो कि आने वाले टाइम में जो बाकी वर्ल्ड में हुआ है. अगर हम यूरोप के परस्पेक्टिव से देखें तो यूरोप का ऑलमोस्ट 95% दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम कन्वेंशनल टू डिजिटल. लगभग 1100 करोड़ मीटर फैब्रिक वो एन्युअली डिजिटली प्रिंट करते हैं पूरा यूरोप. अगर चाइना के परस्पेक्टिव से देखें तो दे आर प्रिंटिंग अराउंड 800 to 1000 करोड़ मीटर एन्युअली डिजिटली. ये 2013 में उनका 17 करोड़ था एंड एट दैट टाइम इंडिया वॉज प्रिंट 3 करोड़ मीटर. सो वी आर वेरी मच श्योर कि जो चीज चाइना में हुई है, जो चीज यूरोप में हुई है, दैट जो एक प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, जो एडॉप्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दैट शिफ्ट में हैपन इन इंडिया एज वेल. तो अगर आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अगर हम ये देखेंगे कि इंडिया स्टार्टेड प्रिंटिंग अराउंड 800 करोड़ मीटर फैब्रिक डिजिटली, इट शुडंट बी द मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो चुका है. And we are at the age of it.
Got it, sir. Thank you so much. Sir, just a final question. So, digitally printed fabric ka cost conventional printing se, is it lower or is it at a similar level or
so,
does it pro sorry yeah please go
so abhi tak aisa hai ki conventional printing jo hai it's more cheaper compared to digital aur ye difference pehle bahut zyada tha. To just give you an idea, pehle jahan pe conventional printing ye 25 rupees meter hota tha, digital ka price 160 rupees per meter tha. धीरे धीरे जैसे वॉल्यूम बढ़ता गया, एडोप्शन बढ़ता गया, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, इंडिया में पेपर इंपोर्ट होता था, इंक इंपोर्ट होती थी, तो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एंड स्केल आज हम वहां पे कि वो डिफरेंस खाली 10 से 15 रुपए का रह गया. एंड वंस द डिफरेंस गोज डाउन, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आ रही है, हाई स्पीड मशीन आ रहे हैं, सो दैट्स हाउ द शिफ्ट विल हैपन फ्रॉम कन्वेंशनल टू डिजिटल.
गॉट इट सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.
थैंक यू सो मच सर.
Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management will be able to address questions from all the participants in the conference, kindly limit your questions to two per participant. Should you have a follow-up question, please rejoin the queue. The next question is from the line of Naveen Ramachandran from Bellwether. Please go ahead.
Hello, Naveen ji.
Hello, sir. I'm audible, sir?
Yes, Naveen ji. Please go ahead.
Yeah. Sir, what is the typical profile of our customer?
ओके सो सर, इसमें जो दो तरीके के या तीन तरीके के कस्टमर की प्रोफाइल आप देख सकते हो. नंबर वन, जो भी इंडिया में आज कन्वेंशनल प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, नंबर पहले तो आप ये देखो कि जो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ कस्टमर का बैकग्राउंड टेक्सटाइल से होता है, या तो वो वीविंग के अंदर होते हैं या तो प्रोसेसिंग के अंदर होते हैं. सो नंबर वन कस्टमर की जिनका ऑलरेडी कन्वेंशनल प्रिंटिंग का काम हो रहा है, दे वॉन्ट टू स्विच देमसेल्फ फ्रॉम कन्वेंशनल टू डिजिटल, या दे वॉन्ट टू एड ऑन फैसिलिटी ऑफ डिजिटल प्रिंटिंग, सो दैट इज योर कस्टमर. नंबर टू इज द ट्रेडर्स, जो कि आज तक ऐसा था कि क्योंकि मिल सेटअप करने के पीछे लगभग 25-30 करोड़ का एक बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है टू स्टार्ट अ मिल, जबकि डिजिटल प्रिंटिंग का इन्वेस्टमेंट आप देखोगे ना तो 30-40 लाख के अंदर यू कैन स्टार्ट डूइंग डिजिटल. तो जो भी मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडर थे जिनका एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, जो बाहर प्रिंट कराते थे, सो ड्यू टू पोस्ट डाउन लाने के लिए दे आर ऑल्सो द कस्टमर. तो एक हो गया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिंटर्स है, सेकेंड हो गया जो ट्रेडर है, थर्ड हो गया कि जिनकी गारमेंटिंग फैसिलिटी है खुद की, या खुद का उनका रोज का फैब्रिक लगता है, सो दे आर ऑल्सो द कस्टमर की जो इस तरीके की डिजिटल प्रिंटिंग की फैसिलिटी लगाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एम्ब्रॉयडरी यूनिट चलाते हैं, जो फैब्रिक पे वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, ये सारे ऐसे कस्टमर होते हैं कि जो एज अ वैल्यू एडिशन प्रिंटिंग करने के लिए डिजिटल प्रिंटिंग के कस्टमर बन सकते हैं. सो दिस इज द कम्प्लीट प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर. सर,
आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, SME कस्टमर ही होते हैं या बड़े मिल्स भी जो हमसे खरीदते हैं?
सर, दोनों तरीके के होते हैं, बड़े यूनिट्स भी होते हैं कि जो आपसे मशीन बाय कर रहे होते हैं, जैसे इंडिया के जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस है या जो बड़े ब्रांड्स है वो भी आपके कस्टमर होते हैं, जो एक्सपोर्टर्स है वो भी कस्टमर्स होते हैं. सो मैं अभी नाम शायद अभी नहीं बता पाऊंगा, बट ये है कि काफी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जो भी कस्टमर है. पर मेजर सर ये होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ऐसे SME या MSME के अंदर ये पेनिट्रेशन ज्यादा रहता है, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू बिजनेसेस, और या तो वैल्यू एडिशन के फॉर्म में देखते हैं. जबकि बड़े यूनिटों में क्या होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन पुट्स करते हैं, देर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ बिग यूनिट या बिग हाउसेज इन इंडिया एज वेल. सो MSME के अंदर पेनिट्रेशन कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है.
So, मेरा दूसरा क्वेश्चन इज दिस फर्स्ट हाफ वी हैव पोस्टेड द हाईएस्ट एवर सेल ऑफ मशीन्स. हिस्टोरिकली इट हैज बीन फ्लक्चुएटिंग एंड बीन इन द रेंज, सो व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू दिस एंड टिल नाउ व्हाट इज आवर टोटल इंस्टॉल बेस टिल डेट?
राइट. सो सर, ये भी आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहा हुआ है. इसके पीछे ना सर, जो इस साल नंबर ऑफ मशीन ज्यादा गए ना, उसके पीछे दो मेजर रीजन है. नंबर वन कि पिछले साल से ना डिजिटल का एडॉप्शन काफी बढ़ चुका है, स्पेशली विस्कोस के अंदर. विस्कोस फैब्रिक के लिए जो मशीनें जो यूटिलाइज होती है ना, इट्स अ हाई वैल्यू मशीन और बड़ी साइज की और बड़े प्रोडक्शन की हाई वैल्यू मशीन्स होते हैं. एंड दिस ईयर वो मशीन नंबर ऑफ मशीन्स वो ज्यादा गई है, बिकॉज विस्कोस का एडॉप्शन पिछले दो साल से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. आप देखोगे ना आदित्य बिरला ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर वेरी मच प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर फैब्रिक. और कॉटन के सामने जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो कॉटन की है वो उतना वॉल्यूम कभी नहीं क्रिएट कर पाएगा. तो इस वजह से विस्कोस की जो एडोप्टेबिलिटी बढ़ी है तो बहुत सारे एक्सपेंशन इसके अंदर हुए. दैट इज नंबर वन. नंबर टू ये है सर कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली टेक्सटाइल के अंदर सब्सिडीज डिक्लेयर करी है अप टू 35%. तो जो लोग छोटे मशीन या छोटे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे उन्होंने सडनली बड़े इन्वेस्टमेंट करना प्लान कर लिया. सो रादर देन पुटिंग अ मशीन ऑफ 1 crore विच गिव्स यू द प्रोडक्शन ऑफ 2000 meters पर डे, पीपल आर प्लानिंग फॉर 2 crore rupees मशीन विच कैन गिव देम प्रोडक्शन ऑफ 5000 meters पर डे. तो वहां पे उनकी प्रोडक्शन भी यूटिलाइज होता है, फ्लोर एफिशिएंसी भी बढ़ती है, एंड देन अगेन दे आर गेटिंग 35% रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो ये दो मेजर फैक्टर रहे जिसकी वजह से मशीन में एक सडन हमने जंप देखा. एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तो अपनी जगह यही है कि आज लोग डिजिटल के लिए अवेयर है, इवन एंड कंज्यूमर भी जानता है कि ये डिजिटल प्रिंटेड ले रहा है या कन्वेंशनल प्रिंटिंग से ले रहा है. सो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस इज ऑलरेडी देयर इनटू मार्केट. एडॉप्शन आ चुका है एंड वो जो एक जनरेशनल शिफ्ट जो होना था वो होना स्टार्ट हो चुका है. यस, सो टोटल जो हमने अभी इंस्टॉल किया ना सर वो मशीन की नंबर है, बिकॉज वी आर इनटू बिजनेस सिंस लास्ट 12 years. हमने ट्रू कलर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2021 में इनकॉर्पोरेट किया था, तो ओवरऑल जो बेस है ना दैट इज 1200. बट वो है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम छोटी प्रोडक्शन की मशीन जो 400 meters पर डे आती थी उसको रिप्लेस कर दिया 4000 meters पर डे वाली मशीनों ने. और अगर आज के डेट पे अगर हम बात करें सो देर आर 560 machines विच आर इन टू ऑपरेशन जिनको हम डेली बेसिस पे इंक और पेपर सप्लाई करते हैं. सो अगर आप इसको नंबर वाइज समझना चाहो ना सर तो अगर इंडिया 180 crore meters फैब्रिक प्रिंट कर रहा है डिजिटली तो उसमें से 30 to 35 crore meters का जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रू कलर्स के एंड से जाता है.
थैंक यू सर. आई हैव मोर क्वेश्चंस, आई विल गेट बैक इन द क्यू.
श्योर श्योर नवीन जी. थैंक यू सो मच.
थैंक यू.
थैंक यू. The next question is from the line of Mehul Panjwani from 40 Sons. Please go ahead.
Hello, sir. Satish bhai, congratulations. Great set of numbers and amazing. So far, the commentary has been really very interesting.
Thank you so much, sir. Thank you so much for the appreciation.
Sir, मुझे एक very strategic question है. आपकी कंपनी मुझे आज पता चला कि आपकी कंपनी 12 साल से बिजनेस में है. अभी तक okay. मुझे लगा था कि 5 साल से ही है, मतलब जो
आईपीओ.
तो मुझे सर ये जानना था कि इंडिया में टेक्सटाइल कंपनीज तो मतलब कितनी कंपनीज तो 50 साल 60 साल से होंगी और आपकी कंपनी 5 साल से है या 12 साल से है, समझ लेते हैं. तो मेरे को एक वेरी बेसिक क्वेश्चन है, आपने ये कैसे ये 5 साल में ये सब इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन काइंड ऑफ बिजनेस कैसे क्रिएट किया, थोड़ा जर्नी बताएंगे कि आपने क्या. सी बिकॉज एट द नंबर्स आर टॉकिंग अबाउट इट, यू नो नंबर्स आर टेलिंग दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग, बट यू नो व्हाट इज द स्ट्रेटजी, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस, बिकॉज आई बिलीव दैट यू गाइस माइट हैव स्टार्टेड विद जस्ट मशीन्स अर्लियर एंड देन यू
गॉट इनटू
दिस स्टफ. सो इफ यू कैन शेयर द जर्नी इट विल बी रियली वेरी प्रोडक्टिव फॉर अस. या
सर, जर्नी सुनने के लिए ना आई विल रिक्वेस्ट कि आप कभी यहाँ पे हमारी जो फैसिलिटी है ना वहाँ पे आओ, सो हम आराम से बैठ के जर्नी पे बात कर सके. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं उसको ऐसे कहूंगा कि वी फोर आर फ्रेंड्स, जो हम डायरेक्टर्स है वी आर फ्रेंड्स, और हमारा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था. सो आफ्टर आर एजुकेशन व्हाट वी डीड इज कि हमने पहली मशीन, क्योंकि सागर भाई जो है उनका उन्होंने अपनी जो जॉब है वो स्टार्ट करी थी किसी इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो डाइज बनाती थी, और संजय भाई वॉज द पार्ट ऑफ एन वन इंटरनेशनल कंपनी जो कि डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन बनाना उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे. सो दे वर इनटू कन्वेंशनल एंड शिफ्ट टू डिजिटल. तो संजय एंड सागर वेर वेरी मच अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी कि इंडिया में भी ऐसा कुछ आ सकता है इन फ्यूचर. सो वी हैव स्टार्टेड विद द स्मॉल प्रिंटर, उसमें काफी सारी दिक्कतें आई. फिर हम मशीन लेके आए तो हमारे पास वी स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स, और वो ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए वी नीड मोर मशीन्स. कैपिटल था नहीं, सो वी कन्विंस आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स कि आप लोग भी मशीन लगाओ सो वी कैन ट्रांसफर द ऑर्डर टू यू. और उस हिसाब से जो हमारी प्रिंटिंग का बिजनेस था वो मशीन सेलिंग से स्टार्ट हो गया. अब मशीन सेल किया था तो वो पेपर बाहर से ले रहे थे, इंक बाहर से ले रहे थे, देयर वर स्ट्रगलिंग विद द सप्लाई. तो उनका ऐसा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग ही इंक सप्लाई करो, आप लोग ही पेपर सप्लाई करो. सो देन वी स्टार्टेड सप्लाइंग इंक. टू सेम कस्टमर। पेपर हमने इंपोर्ट करके सप्लाई करना स्टार्ट किया, इंपोर्ट के अपने चैलेंजेस होते थे तो हमने यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी को एंकरेज किया और उनसे इन्वेस्टमेंट करा के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके उनका पेपर कंज्यूम करना स्टार्ट किया। वंस वी हैड द कैपिटल तो हमने खुद की पेपर फैक्ट्री डाल दी। सो ऐसे करते करते वॉल्यूम ग्रो होता गया और इंडिया में क्योंकि डिजिटल की उस टाइम पे सर इट वॉज अ बिगिनिंग 2013 की बात करें ना, सो वॉल्यूम वॉज ओनली 6 करोड़ मीटर। हाँ। और वो भी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड और यूनिफाइड था कि इसी इंडस्ट्री में यहीं पे ये बंदे यूज कर रहे हैं। सो वी हैड एन अपॉर्चुनिटी कि हम वहाँ पे पूरे इंडिया में या लोगों को जिन जिनको ये फैसिलिटी लगानी है उनको एनकरेज कर पाए, उनको एजुकेट कर पाए, हम उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर पाए, लोगों को नॉलेज नहीं थी तो वो शेयर कर पाए। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर क्या होता है कि मशीन कोई और सप्लाई करता है, सर्विस कोई और देता है, इंस्टॉलेशन कोई और करता है, रॉ मटेरियल आप कहीं और से लेते हो। सो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये जो सारे चैलेंजेस जो हम भी फेस कर रहे थे हमारे प्रिंटिंग के टाइम पे और हमारे कस्टमर भी फेस कर रहे थे, तो हमने कुछ नया नहीं किया, हमने जस्ट हमारे कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स थे ना सोर्सिंग के सर्विस के उसको हम हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड करके उसको सॉल्व करते गए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वॉल्यूम उतना पीक होता गया और जब हमने बैठ के उसको देखा तब हमें पता लगा कि यार हम तो इस वॉल्यूम पे पहुंच चुके हैं आज। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी गोज ऑन। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इट कैन बी मोर बिगर देन दिस।
राइट राइट सर, अनदर क्वेश्चन इज, थैंक यू सो मच फॉर द एलेबरेट आंसर, व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर योर काइंड ऑफ, आई मीन आई नो दैट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिविजन्स, बट यू नो इफ यू कैन जस्ट थ्रो अ बॉल पार्क नंबर।
नहीं सर, इसको मैंने अभी जैसे किसी भैया ने पूछा था ना कि क्या लग रहा है मार्केट क्या होगा, सो कन्वेंशनल प्रिंटिंग जो आज इंडिया में हो रहा है ना सर, दैट इज अराउंड 2500 करोड़ मीटर।
राइट,
उसके सामने डिजिटल प्रिंटिंग इज 200 करोड़ मीटर। सो 200 करोड़ का अगर मान लो कि हम आने वाले 3 से 5 साल में इफ वी कैन अचीव, अगर हम 600 से 800 करोड़ मीटर पे भी पहुंचते हैं ना, तो इट वॉन्ट बी मैटर ऑफ सरप्राइज क्योंकि पूरा यूरोप इसमें ट्रांसफर हो चुका है। 95% जो है वो डिजिटली प्रिंट होता है पूरे, अगर मैं एशिया को निकाल दूं ना तो पूरे वर्ल्ड में 1100 करोड़ मीटर प्रिंट होता है डिजिटल।
राइट,
अगर हम चाइना की बात करें तो दे आर ऑलरेडी एट 800 और 1000 करोड़ मीटर। तो ये शिफ्ट जो पूरे वर्ल्ड में हुआ है ना, सो इंडिया इज एट द एज ऑफ दैट शिफ्ट की वो आने वाले टाइम में हम अगर वहां पे होते हैं तो इट वॉन्ट बी अ सरप्राइज फॉर एनी वन ऑफ अस।
राइट राइट राइट, okay sir, I'll get back in the question queue. Thank you so much.
Thank you so much sir.
Wonderful
talking
to you. Yeah,
thank you, same here sir.
Thank you. The next question is from the line of Namesh Gupta from NGC. Please go ahead.
Hello
Namesh
sir, meri voice. Haan ji sir. Sir, ek to aapko badhai ho sir, bahut acche aapke result hai sir. Main aapse
kuch
poochna chah raha tha ki hamara competitive advantage sir, इसमें सबलिमेशन पेपर जो डिवीजन है इसमें वर्सेस आपने बताया लाइक 8 से 10 पीयर्स और है अभी इंडिया में।
राइट,
प्लस जो हमारा एक और हमारा डिवीजन है प्रिंटिंग डिवीजन,
डिजिटल
प्रिंटिंग डिवीजन, इसमें भी मेरे ख्याल इसमें तो शायद बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे।
200 करोड़ मीटर प्रिंट कर रहे हो, सारे कॉम्पिटिटर ही हो गए।
हाँ, तो थोड़ा सा सर अनडाउटेबली चलिए आपका एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, लेकिन इन दो डिविजन्स में मेरा क्या सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अगर मैं थोड़ा सा अपने आपको दूसरे पीयर से कंपैरिजन करूँ तो मैं।
राइट, सो अगर जैसे हम पेपर डिविजन की सबसे पहले सर बात करें ना, तो नंबर वन कस्टमर के लिए क्या होता है कि आप खुद को ही, नवीश जी आप खुद को ही देखो कि आपने एक प्रिंटिंग की मशीन लगाई हुई है, आपको सर्विसेज जितनी भी है इंस्टॉलेशन वो है वो ट्रू कलर्स में आप एक फोन करते हो और आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज सारा मिल रहा है, इंक भी आपको हमारे यहाँ से आ रही है और आपको एज अ कंज्यूमेबल दूसरी चीज चाहिए होती है पेपर। सो नंबर वन जो एक एडवांटेज हमें मिलता है ना वो ये है कि हमें कस्टमर को फाइंड नहीं करना है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनके साथ हमारे ऑलरेडी रिलेशन बने हुए, क्योंकि आज आप मेरे से अगर 1 करोड़ रुपए की या 2 करोड़ की एक मशीन ले रहे हो, सो एक रिलेशन बिल्ड होता है तभी आप लेते हो, ट्रस्ट बिल्ड होता है तभी लेते हो। सो वाइल सप्लाइंग द पेपर मुझे वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड करना, मुझे वो कस्टमर नहीं ढूंढना, मुझे खाली आपको अप्रोच करना है। अगर मेरे जो प्राइसिंग है या मेरी जो पेपर की क्वालिटी है वो सारे कॉम्पिटिटर से एट पार है या उनके लेवल पे है, सो आप बट नेचुरल ये हो जाता है कि आप हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। सो मैं अगर क्वालिटी पे भी बात ना करूं, मैं अगर प्राइसिंग पे भी ना बात करूं, तो ये एक हो जाता है कि एक जगह पे वो ट्रस्ट बना हुआ है, एक सप्लायर से चीज आ रही है तो वहीं से आए, ये सारा पूरे कस्टमर का थॉट प्रोसेस रहता है। सो नॉर्मली इसलिए हमारे लिए ये होता है क्योंकि हमें कस्टमर ढूंढने नहीं जाना। और अगर आप अब खुद को ऐसे देखो कि आप कल एक सब्लिमेशन पेपर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी लगा रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा कि आपको कल कस्टमर ढूंढने जाना है कि भाई जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर रहा है आप उसको जाके पेपर बेचने की कोशिश करोगे। अब उसके लिए उसके पास आपके लिए 10 क्वेश्चंस होंगे कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कैपेसिटी है, क्या क्वालिटी है, दे पाओगे नहीं दे पाओगे। सो ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर ही हमारे कंज्यूमेबल के रिपीट कस्टमर बन रहे हैं। राइट,
ओके ओके सर, एक क्वेश्चन और मेरा सर। सर अभी हमने H1 में हमारा जो टर्नओवर था सर उसमें अराउंड हमने 25% हमने सर है ना मशीन से किया।
राइट,
25% हमारा मशीन से, अदर देन मशीन से सर हमारा है ना 75% आया।
राइट,
लास्ट ईयर अगर मेरा H2 में देखता हूँ FY25 H2 में देखता हूँ तो मेरा मशीन का टर्नओवर अराउंड 12.5% था सर।
राइट सर,
और अदर देन मशीन सर मेरा 87.5% था।
राइट सर,
मैं एक बार को सर मैं एक बार को अजम्पटिव लेता हूँ कि मेरा करंट H2 भी मेरा मशीन का अगर सिर्फ है ना 12.5% रहेगा और बाकी का टर्नओवर 87.5% रहेगा तो मैं क्या जो पुराना लास्ट ईयर का मेरा बिड्डा अराउंड 24% था सर, क्या मैं वापस हाँ। उस पे आप हो गया?
अगर अगर मशीन के जो नंबर है वो उस वहाँ पे रहता है ना तो देर आर द चांसेस की एबिडा लेवल हम इम्प्रूव कर पाए या वो लेवल पे आ पाए। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो नई जो प्रोडक्शन फैसिलिटी जो हमने अनाउंस करी हुई है पेपर की, फ्रॉम 1 करोड़ मीटर टू 2 करोड़ मीटर हम जो जा रहे हैं अभी, सो पहली जो इस H2 की जो पहली प्रायोरिटी होगी ना वो ये होगी कि ये कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज करना। और ये कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज करने के लिए जैसे हमने अभी एक मोट आपको बताया कि कस्टमर ऑलरेडी हमारे पास वो कस्टमर बेस है, सो वहाँ पे एक पेनिट्रेशन वो बेस होगा। तो ये पर्टिकुलर H2 के लिए तो वी आर होपिंग कि हम ये जो मार्जिन जो पिछले साल हमने जो अचीव किए थे ओवरऑल उसी मार्जिन को लेट्स से कि इन द रेंज ऑफ लेट्स से 10-11% वहीं पे पैट मार्जिन को लेके हम मार्केट पेनिट्रेशन पे और ज्यादा फोकस करें क्योंकि हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हुई है। सो दैट विल बी द फोकस फॉर दिस H2। अदरवाइज अगर हम स्टेडी हो के अगर सीधा मेजर फोकस हमारा प्रिंटिंग पे हो या सिर्फ पेपर के रेवेन्यू के नंबर को देखे तो हाँ वो एबिटा मार्जिन वो अचीवेबल है।
ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू,
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच,
थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, काइंडली लिमिट योर क्वेश्चन टू 1 पर पार्टिसिपेंट। शुड यू हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन प्लीज रीजॉइन द क्यू। The next question is from the line of Deepak Poddar from Sapphire Capital. Please go ahead.
Hi, sir. Thank you.
Hello, Deepak.
Yeah, hello. Yeah, thank you very much, sir, for this opportunity. So, just first of all, clarification, the data point that you have given. So, how much was the India digital printing out of, I think, 2,500 crores meter that you
mentioned? Right now, it's a 200 crore meter, sir.
Only 200 crore meter.
Okay. Yeah, yeah.
And in terms of finance cost, I mean, you would have paid your debt, right? So your finance cost.
Right, sir.
How should one look at? I mean, which was 2.5 crores going forward? How much we should look at?
So finance cost, jo per quarter, jo hum bear kar rahe the na, that was somewhere around 1.25 crore per month tha, per quarter tha. वो फाइनेंशियल कोर्स अभी के लिए जो 2 क्वार्टर के लिए अंटिल एंड अनलेस वी आर डूइंग एनी फर्दर एक्सपेंशन तब तक के लिए एड ऑन होगा हमारे बॉटम लाइन में। बट वी आर ऑन द एज ऑफ की जहाँ पे हम आने वाले टाइम में नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये जो बैंक जो लोन रीपेमेंट हुआ था वो इसी पर्पज से हुआ था कि आने वाले एक्सपेंशन में जो कैपिटल की जो लिमिटेशन जो बैंक फंडिंग के लेके जो लिमिटेशन हो उन सारी लिमिटेशन को ओवरकम किया जा सके।
ओके, सो अभी जीरो हो गया फाइनेंस कॉस्ट?
अभी जीरो, अभी टर्म लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स जीरो।
ओके, एंड द कैपेसिटी यू मेंशनड फ्रॉम 1 करोड़ मीटर टू 2 करोड़ मीटर वी हैव एक्सपेंडेड, दैट्स मंथली राइट?
मंथली, या मंथली इनटू पेपर डिवीजन।
ओके, एंड व्हाट वाज द व्हाट इज द रेवेन्यू पोटेंशियल एंड कॉरस्पॉन्डिंग केपेक्स इन्वॉल्व्ड देयर ऑफ दिस?
सो अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन में हमारे साथ क्या हुआ है सर कि द डे इन 2022 जब हमने ये पूरा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया था ना तो प्रोजेक्ट की हमने कैपेबिलिटी 3 कोटिंग लाइन मतलब ये 2 करोड़ मीटर तक पहुंच सके उसी हिसाब से डिफाइन करी थी। तो यूटिलिटीज एंड अदर कैपेक्स वॉज डन। तो अभी जो कैपेक्स हुआ है टू एनहांस दिस कैपेसिटीज अराउंड 6-7 करोड़ मशीन की प्राइस राइट। और उसके सामने जो रेवेन्यू जो है तो क्योंकि ये मशीन से 1 करोड़ मीटर पेपर आप हर मंथ बना पाओगे अगर मैं अभी का 105.6 रुपीज एवरेज पेपर प्राइस होता है वो अगर पकड़ के चलू तो इट शुड जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 5 करोड़ और एनुअल रेवेन्यू अगर हम देखें तो 60 करोड़ इट इज पॉसिबल टू एड 60 करोड़ इनटू पेपर डिवीजन
राइट.
सो 6 करोड़ इज द कैपेक्स जिसके सामने वी कैन एक्सपेक्ट 60 करोड़ इन रेवेन्यू
एंड दिस 60 करोड़ इज एडिशनल राइट यू आर टॉकिंग अबाउट
एडिशनल आई एम टॉकिंग अबाउट.
Okay. That would be it from my side. All the way best to you, sir. Thank you so much.
Thank you so much, sir.
Thank you. Ladies and gentlemen, we request you to kindly limit your questions to one per participant. The next question is from the line of Raghuveer from NEO. Please go ahead.
Hello, Satish ji. How are you?
Hello, sir. All good, sir. Aap kaise ho?
Yes, I'm also good.
Yes,
so my question was regarding the Spanish ink distribution ka notice which was released yesterday.
Yes, right.
So what is the revenue which is expected from that? And the second was regarding the use of working capital proceeds. So where is the working capital being used?
Okay. सो नंबर वन जो स्पेनिश किंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात होती है वो इटागा करके स्पेन की कंपनी है. दे आर इन टू डाइज एंड इंक मैन्युफैक्चरिंग सिंस 1999 एंड आने वाले टाइम में इंक में तीन तरीके की इंक होती है. फॉर पॉलिएस्टर प्रिंटिंग इज द सब्लिमेशन इंक. फॉर रिएक्टिव जो हम डायरेक्ट फैब्रिक विस्कोस या कॉटन प्रिंट करने के लिए जो इंक यूज होती है दैट इज अ रिएक्टिव इंक. एंड थर्ड एक इंक आती है पिगमेंट जिसके लिए कोई भी प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट फैब्रिक की पे नहीं करना होता. सो मोस्टली इस इंक का यूज कहाँ पे होता है होम फर्निशिंग इंडस्ट्री जैसे हो गई टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई जहाँ हैवी फैब्रिक्स पे प्रिंट होता है डायरेक्टली. सो उस तरीके की इंडस्ट्री में ये पिगमेंट इंक का ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है. और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया में डिजिटल प्रिंटिंग ग्रो हो रहा है आप देखोगे टेक्निकल टेक्सटाइल वॉज नॉट द बज़वर्ड बिफोर टू ईयर्स बट अभी आप सुनोगे कि हर जगह उस डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहे हैं तो उसी को प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट आती है. जैसे एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है इन द सिमिलर फील्ड तो उनको हमने मशीन सप्लाई की हुई है फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओनली. तो वो एक इमर्जिंग मार्केट आने वाले टाइम में इंडिया में हो सकता है एंड दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग स्पेनिश जो कंपनी है दे आर लुकिंग फॉर दैट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कि मार्केट अगर वो ग्रो हो रहा है सो वी शुड बी प्रेजेंट देयर और दैट्स व्हाई दे हैव जॉइंड द हैंड विद अस कि हम उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सर्विसेज वगैरह देखें. एंड अगर इसको रेवेन्यू के फॉर्म में अभी हम इसको वर्कआउट शायद ना कर पाए या उस पर ज्यादा डिस्कस ना कर पाए बट इट इज द इमर्जिंग मार्केट जो पिछले 5-10 साल में डिजिटल के साथ हुआ है जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो हुई है हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में पिगमेंट कैन बी गेम चेंजर इन ऑल अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स. तो उस हिसाब से वी आर ट्राइंग टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल विद देम. एंड जो आपने वर्किंग कैपिटल का जो अभी हमें क्वेश्चन करा है कि वर्किंग कैपिटल जो हमने रेज किया वो कहाँ पे यूटिलाइज होना है सो वो हमारे तीनों डिवीजन में हमने उसको एज पर द रेवेन्यू ऑफ द डिवीजन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. जैसे अगर आप देखोगे कि पेपर डिवीजन के अंदर अगर हम बात करें कि नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट क्वार्टर फोर में तो डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे कि जो हमारा 5 करोड़ का जो एवरेज रेवेन्यू रनरेट था पेपर का वो सीधा 10 करोड़ होगा. अगर हम हमारे 90 डेज की क्रेडिट साइकिल पकड़ के चले ना तो सागर भाई वो इज लीडिंग दैट पर्टिकुलर डिवीजन ही नीड 15 करोड़ ऑन एन एवरेज मोर फंड. सेम थिंग जो हमारा 15% आपने देखा होगा कि हमारे जो इंक का डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो करंट है उसमें 50% ग्रोथ हुई है. सो वहां पे वो फंड संजय भाई की टीम जो पूरा मशीन एंड इंक का बिजनेस देखती है क्योंकि दोनों में पूरा ग्रोथ है तो वहां पे फंड उनके रेवेन्यू के हिसाब से डाइवर्ट हुए है. एंड अगर आप प्रिंटिंग डिवीजन पे आओ जहां पे हमारा पिछले साल का जो एवरेज रन रेट था वो 5 करोड़ का इस क्वार्टर का जो एवरेज जो H1 का अगर हम एवरेज रन रेट की बात करें ना इट इज समवेयर अराउंड 7 जो हमें लगता है आने वाले टाइम में वी विल रीच अप टू 10. तो हमारे जो अभी जो रेवेन्यू जो बढ़ रहे हैं उस रेवेन्यू के सामने जो क्रेडिट लाइन जो हम ऑफर करते हैं उसमें वो कंपनसेट होगा पूरा वर्किंग कैपिटल.
Thank you so much.
Thank you. The next question is from the line of Ganesh from Dhanalakshmi Investments. Please go ahead.
Thank you.
Hello, Ganesh ji.
Thank you, sir. Thank you for the opportunity, sir. It's better than most, sir.
Sorry to interrupt, Ganesh. Your voice is breaking.
Am I audible now?
Voice break ho rahi hai, but go ahead. Agar samajh mein aa gaya, then we'll answer.
So all my questions are with respect to the machinery itself, since one question is to ask. I just wanted to know what is the typical warranty that we give, and what is the distribution between Kitlebelt and all the five brands that you have mentioned in your DIHP. So what is the mix?
पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि वारंटी टाइमलाइन क्या होता है, तो उसको आंसर कर देता हूँ. वारंटी टाइमलाइन जो होती है वो मशीन टू मशीन वेरी करती है, बट जनरली इट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर टाइमलाइन रहते हैं. एंड देन आफ्टर जो स्टिकीनेस आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमेबल, जो वारंटी के बाद भी जो स्पेयर पार्ट चाहिए होते हैं. सो कोनिका मिनोल्टा का कोई पार्ट अगर डैमेज होता है तो कोनिका मिनोल्टा से मिलेगा, हॉपटेक का डैमेज होता है तो हॉपटेक से ही मिलेगा. सो दैट्स हाउ द स्टिकीनेस इज, अदरवाइज जो वारंटी होता है दैट इज फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर की एक रेंज रहती है. सेकेंड क्वेश्चन में नहीं समझ पाया था उसके पहले.
सेकेंड क्वेश्चन ये था कि आप बोल रहे हैं कुछ कुछ अवेलेबल एंड देन वी सेल इट इन द ब्रांड ऑफ ट्रू कलर सेल्फ एंड देन ऑब्वियसली देयर आर कोई कम इन द.
सॉरी टू इंटरप्ट गणेश, कैन यू प्लीज रीजॉइन द क्यू.
नहीं नहीं आवाज आ रही है जी, सॉरी
फॉर दैट.
थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ खुशी फ्रॉम रेड एंड कैपिटल, प्लीज गो अहेड.
Hello sir.
Hello Khushi ji.
Hi sir, sorry I just missed them data points sir. Aapne kitna H1 mein machines install kiya hai?
The number of machines are 60.
Okay.
And the revenue that we generated is 38.45 crore.
Okay sir, and you are targeting 90 to 100 machines end of the year, right?
Yes, yes, yes.
Okay sir, thank you so much.
Yeah, thank you so much Khushi.
Thank you. The next question is from the line of Vishwendra Singh from Prudent Equity. Please go ahead.
Hi sir. Anna.
Hello Vishwendra ji.
Hello sir. Sir, ये solar power जो आप plant डाल रहे हैं ये कब तक commission हो जाएगा अपना, और कितने cost saving हम target कर रहे हैं sir?
Right. So ये अच्छा observation किया है and the very different question came across. हमारे पास सर अभी जो हम per day हमारे दो plant है, एक paper का plant है और एक हमारे printing का plant है. दोनों में जो हम energy consume कर रहे हैं ना per day, it is a 20,000 unit that we are using right now. ये consumption है. हमारे पास ऑलरेडी 1 MW का एक रूफटॉप प्लांट लगा हुआ है विच इज जनरेटिंग समवेयर अराउंड 3,500 to 4,000 यूनिट डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन पर डे. और अभी जो हम नया जो एड ऑन कर रहे हैं जो कि कमीशनिंग होके स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 मंथ्स, उससे हम और 4,000 यूनिट जनरेट कर पाएंगे. सो वील हैव द जनरेशन ऑफ समवेयर अराउंड 8,000 यूनिट अगेन अ सीजनल, सो लेट्स से 7,000 to 8,000 यूनिट अगेंस्ट what we are using is a 20 to 22,000 units. So it will be roughly around 30 to 40% is the consumption that we'll be generating by ourselves.
Okay.
Okay.
That will do it.
Yeah.
Thank you. The next question is from the line of Sahil Raj from SAM. Please go ahead.
Hello Sahil ji.
Hello sir. सर क्वेश्चन कि आपने बताया कि 50% हमने रेस किया था इनकम बार रेवेन्यू इंक्रीज किया है और ऑलमोस्ट सेम हमने भी इंक्रीज किया है इन H1, तो H2 में भी क्या सिमिलर टारगेट्स हैं या मशीन का ज्यादा रहेगा क्योंकि आप तो 90 to 100 मशीन्स प्लान कर रहे हैं.
राइट, सो मेन H2 के अंदर सर मेजर फोकस क्या रहेगा कि सबसे पहला जो हमने जो हमारी पेपर प्लांट की जो कैपेसिटी को हम डबल करने जा रहे हैं, सो उसका यूटिलाइजेशन हम मैक्सिमम कितना पर कर पाए, दैट विल बी द मेजर टारगेट. और प्रिंटिंग क्योंकि जैसे Q1 के बाद Q2, Q3, Q4 ऑनवर्ड्स टेक्सटाइल के अंदर बेटर मार्केट कंडीशंस होते हैं, बेटर डिमांड्स होते हैं, सो वी आर होपिंग कि हमारा जो प्रिंटिंग का बिजनेस है वो भी कंपैरेटिवली वहां से ग्रो करे. और उसमें भी हमने जैसे मैंने बताया था अभी कॉल पे मेंशन किया था कि उसमें भी हमने हमारी प्रिंटिंग फैसिलिटी को जो हम विस्कोस प्रिंट करते थे उसको कंपैरेटिवली वहां पे भी एनहांसमेंट हुई है. सो फोकस रहेगा कि उसको एनहांस किया जाए. और मीनवाइल मशीन की सर रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि ऑलरेडी बहुत सारे डील्स ऐसे होते हैं जो पाइपलाइन में चल रहे होते हैं एंड क्योंकि मशीन की जो एवरेज जो सेलिंग प्राइस जो अभी जैसे विस्कोस प्रिंटिंग की जो डिमांड आ रही है एवरेज 2 करोड़ के आसपास की मशीन होती है. अगर लेट्स से वी आर डीलिंग अबाउट 3, 4, 5 मशीन एट अ टाइम तो ये हो जाता है कि वो रेवेन्यू में सडन जंप आ जाएगा. अदरवाइज अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो वी आवर मेजर फोकस विल बी ऑन दी जो संजय भाई सागर भाई जो डिवीजन लीड करते पेपर का, आशीष इज लीडिंग दी फैब्रिक डिवीजन, दोनों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विद द मेजर फोकस इन H2 और बाकी मशीनरीज तो अपने हिसाब से इंस्टॉल होते ही जा रहे हैं।
सर कोई इंटरनल टारगेट्स आपने सेट किए हैं अभी रेवेन्यू के लिए या अभी के लिए?
जैसे रेवेन्यू के इंटरनल टारगेट ऑलरेडी सेट है बट वो क्योंकि वो H2 के रेवेन्यू टारगेट्स होंगे सो मेरे ख्याल से मैं अभी उस पर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बट ओवरऑल अगर इसको एक नॉर्मल तरीके से या नॉर्मल देखे तो हम 30% जैसे ग्रो करते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर ग्रोथ रेट को आप देखो तो डाउन द लाइन 3 to 5 ईयर्स आपको एक ग्रोथ नंबर दिख सकते हैं।
ठीक है सर। और हमारा H1 और H2 सर कितना रहता है? 40-60 रहता है क्या? ऑलमोस्ट
समझो आपकी वो 60-40 जितना रहता है नॉर्मली, बट इस बार क्योंकि वो मशीन के जो नंबर ऑफ सेल्स है वो ज्यादा है सो वी नीड टू सी द नेक्स्ट क्वार्टर की ये क्वार्टर कहाँ पे जाता है, देन वी कैन जज, अदरवाइज 50-50 या मोर देन 55 दैट मे हैपन। ऑलराइट
सर, थैंक यू सर।
Thank you.
Ladies and gentlemen, that was the last participant for today. I now hand the conference over to Ms. Chandni for closing comments. Thank you and over to you, ma'am.
On behalf of True Colors and Equibrix Advisors, I thank everyone for taking the time to join today's earnings call. If you have any queries, you can connect to us at info@equibrix.com. Once again, thank you for joining the conference. Thank you, sir.
Thank you so much. Thank you so much, everyone.
Thank you, ma'am. On behalf of Equibusiness Advisors Private Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us and you may now disconnect your lines.